మన్యే వైకుంఠ ప్రియదర్శనం. उद्धव जी भगवान को प्रश्न करते हैं, ब्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव यावच्छ्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भया. हे भगवान, मैं आपको जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ कि भागवत धर्म क्या है. इस भागवत धर्म के द्वारा उसका श्रवण करने से, श्रद्धा से मृत्युलोक के मानव सर्व प्रकार से भय से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं. उस भागवत धर्म का मैं श्रवण करने चाहता हूँ. उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभु कह रहे हैं कि विरक्तों के लिए ज्ञान योग है, जो संसार आ सकते हैं उन लोगों के लिए क्रिया योग है, और जिसमें थोड़ा वैराग्य है और मोह भी राग भी है उन लोगों के लिए भक्ति योग बताया है. वैराग्य होने तक अथवा भजन कथा में श्रद्धा होने तक कर्मयोग का अधिकारी और बनता है. कर्मयोग में अधिकारानुसार गुण दोष का विभाजन भी किया जाता है. कर्म के अनुसार, अपने अपने अधिकार के अनुसार साधन गुण भी होता है, साधन दोष भी बनता है. अधिकार के विपरीत वही वस्तु है, वही विषय है, परंतु वो अधिकार न होने के कारण वो गुण के जगह वो दोष बन जाए. किसी के लिए कुछ गुण है, अधिकार के विपरीत कोई भी काम करते रहोगे तो वो अपने लिए दुखकारक है. हमको अपने स्वानुभव से उचित होता है. यहाँ पर बात एक ही है, समझना भी वहीं पर है कि विश्व में परम तत्व परमात्मा एक ही है, दूसरा है ही नहीं. जिसको परम तत्व कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान, वो भगवान इस सृष्टि के अंदर दूसरा है ही नहीं. अपने अधिकार के अनुसार, अपने संबंध के अनुसार हरेक व्यक्ति उपासना के योग से और पूजा पद्धति की भिन्नता के कारण अपने अपने इष्ट का अलग अलग नाम लेकर के वो उसकी उपासना कर रहा है. सभी में वो एक ही है, दूसरा कहीं पर है ही नहीं. परंतु दृष्टि जैसी जितनी जैसी होगी वैसा ही उसको प्रतीत होगा. परमात्मा का अखंड ब्रह्म स्वरूप पूर्ण परमात्मा सबको एक दृष्टि से कभी भी प्राप्त नहीं होता है. सबको अपनी अपनी दृष्टि के अनुरूप ही परमात्मा की पहचान होती है. परमात्मा भगवान का दर्शन होता है अपने अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप. जैसी रुचि होगी ही वैसे ही परमात्मा की सृष्टि हमें दिखाई देगी. और उस सृष्टि में भी भगवान तो यही कहते हैं कि सब के सब मेरा ही स्वरूप है. तो यहां पर परमात्मा एक ही है, इसको विभू कहो, भगवान कहो, प्रभु कहो, वो मात्र एक ही है, दूसरा है ही नहीं। व्यवहार भेद के कारण, विचार भेद के कारण और उपासना भेद के कारण हमको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रतीति परमात्मा की हो रही है। बाकी स्वरूप एक ही होते हुए भी संबंध अनुसार, जैसे एक व्यक्ति को अलग अलग संबंध से उसका परिचय होता है उसके मानस में, किसी के लिए वो पिता है, किसी के लिए पुत्र है, किसी के लिए वो भाई है, किसी के लिए वो चाचा है, हर एक नाम पर संबंध अलग अलग होगा, मगर व्यक्ति तो वही की वही है। वैसे ही नाम रूपात्मक भिन्नता होते हुए भी वह स्वयं एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। परमात्मा एक है, प्रकृति है, उस प्रकृति है शरीर, शरीर के अंदर पांच भौतिकता है, इसलिए उसमें भिन्नता मिलेगी आपको। लेकिन अंतर अंदर बैठा हुआ जो चैतन्य है मात्र एक ही, उसमें से कुछ भी आप अलग कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, जिस शरीर में बैठे हो उस शरीर के अंदर आप अभ्यास और ज्ञान के अभ्यास के द्वारा शरीर से अपने को अलग कर सकते हो, लेकिन आत्मा के अंदर आप, आत्मा में से आप कभी भी अलग नहीं बन सकते। आत्मा का स्वरूप होते हुए भी हम जब तक शरीर में अध्यास रखते हैं तब तक आत्मा होते हुए भी हम शरीर बन जाते हैं, परंतु अध्यास छूट जाने के बाद ये शरीर में नहीं हूं, उस समय भगवान एकमात्र आत्मा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, वो चेतना एक ही बची रहती है। शरीर जो है वो पांच भौतिक है, जिसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति एक नहीं है, उसके अनेक प्रकार है, अनेक रंग है, जिसको प्रकृति को माया भी कहते हैं। माया के रंग भिन्न भिन्न होते हैं, माया का स्वरूप और आकार जैसे आसक्त होने वाला का मन होता है ना, वैसा बन जाता है, उसको कहते हैं प्रकृति। आप देखिए प्रकृति के अगणित रूप होते हैं, किस किस, कोई किसी से मोहता है, कोई किसी को चाहता है, अपनी अपनी आसक्ति अपनी रुचि के अनुरूप अलग अलग बने। वस्तु तो सब में समान ही है, फिर गुण क्या और दोष क्या? जब समान है, प्रकृति भी ईश्वर की ही माया है, ईश्वर की ही लीला है, तो वस्तुतः उसको समान, वो भी समान है, वो भी विभूति है परमात्मा की, तो उसमें गुण दोष का कोई स्थान ही नहीं होता है, कोई स्थान न वह गुण है न दोष है। ये सब के सब वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, है सही, अवस्था के अनुरूप अनुसार होता है। अभी बताया वस्तुनिष्ठ नहीं है, वहां पर जैसी अवस्था हमारे मन की जैसी अवस्था होगी उस प्रकार की हमें हमारी रुचि बनेगी। इसलिए सबसे पहले मन की अवस्था को स्थिर करना पड़ेगा। मन जितना चंचल कम इतना वो वस्तुनिष्ठ बनेगा, परंतु व्यवहार अनुसार व्यवस्था होगी और व्यवस्था के अनुरूप अनुसार वो होता है, गुण दोष उसमें भी आएगा। जहां पर व्यवहार है, व्यवहार में अच्छा भी लगेगा, व्यवहार बुरा भी लगेगा, तो अच्छाई बुराई में जो भेद उत्पन्न हुआ वह राग भी होगा और द्वेष भी होगा। जहां पर भेद दृष्टि आ गई, वहाँ पर आप समझ लेना कि वहाँ कुछ न कुछ अशांति, दुख, आपत्ति इसका सर्जन होगा ही। तो संसार के पदार्थों में, जो संसार के पदार्थ हैं, वो उसके अधिकारी पुरुषों के अभीष्ट की सिद्धि में सहायक बनते हैं, उसकी इच्छा पुष्ट करने में वो सहायक होता है। इस प्रयोजन से वेद के अंदर अपने शास्त्रों में सम वस्तुओं को भी विषम नाम रूप का आरोप कर दिया है, सम होते हुए भी, क्यों कि वहां पर भेद है। कहीं पर भी भेद होगा, हम जो नहीं है उसमें भी भेद लाकर रख देते हैं। भगवान में क्या भेद है, भगवान एकमात्र है, लेकिन उपासना पद्धति के भेद के कारण भगवान में भी वो हम उसका आरोपण कर देते हैं। सच्चा नहीं होते हुए भी मात्र असत्य है, झूठ है, फिर भी हमारी उपासना पद्धति की भिन्नता के कारण ईश्वर को भी हमने बांट लिया, टुकड़े कर दिए ईश्वर के। तो ये जो अपराध है, तो अपराध का नाम ही विषम नाम रूप आरोपण, विषमता आई। उसमें हमारी श्रद्धा होगी, वहां पर हम आसक्त हो जाएंगे, और जहां पर श्रद्धा नहीं बैठी है तो वहां पर हम उसके प्रति द्वेष करेंगे। भगवान के स्वरूप के अंदर भी यही बात हम ला करके रख देते हैं, ये भगवान हमारे नहीं है, ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं, बस यही जो आरोपण है, इस आरोपण के कारण ही प्रभु नाम रूपात्मक बना देते हैं। हम समान वस्तु ही किसी के लिए शुभ भी होती है, देखिए यहां पर समान वस्तु यही भेद के कारण किसी के लिए शुभ भी होती है, किसी के लिए अशुभ भी बन जाती है, किसी के लिए गुण भी बनती है, किसी के लिए दोष भी बन जाती है। क्यों, सम और विषम, ये जो सम विषमता का भेद जिसको द्वैत कहेंगे, वो भेद के कारण वस्तु का स्वरूप और धर्म न होते हुए भी उसको धर्म विरुद्ध भी बना देते, उसको इसके द्वारा व्यवहारिक सिद्धि मिलेगी आपको, व्यवहारिक सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, वहां पर अपना स्वार्थ धर्म सिद्ध होता है, अपनी भेद दृष्टि के कारण अपना स्वार्थ है, और स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक वो व्यवहारिक सिद्धि आपको प्राप्त हो गई, चलो सफलता हो गई, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, भगवान को हमने हमारी इच्छा के साथ जोड़ दिए, इच्छा हमारी है और जोड़ देते हैं भगवान को। आप जीव भाव से, शरीर भाव से तो इच्छा के साथ जुड़े हुए, परंतु अपने इष्ट भगवान को भी अपनी इच्छा के साथ जोड़ देते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक भगवान भी अच्छा लगता है, धर्म भी अच्छा लगता है, समझिए। तो इस प्रकार जीवन यात्रा चलती है, प्रयोजनवश ही वस्तु में भेद की कल्पना भी की जाती है। हमारे स्वार्थ के कारण, हमारी इच्छा पूर्ति के कारण। भेद वास्तविक है ही नहीं, हमारी रुचि के कारण हमने भगवान में भेद, उपासना के कारण हमने अलग किया। वास्तव में भेद कोई है ही नहीं, समग्र समस्त सृष्टि एक ही है। तो काल्पनिकता है, एक काल्पनिक है। इस विषय का जैसा विवरण श्रीमद् भागवत में मिलता है ऐसा अन्यत्र दुर्लभ। भागवत में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, भक्ति हम करते हैं लेकिन भक्ति शुद्ध कैसी, साधन शुद्ध कौन सा और अशुद्ध कौन सा, यह बहुत स्पष्ट यहाँ पर व्यास जी ने भागवत में बताया। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्वार्थ परायणता के रूप में हम परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, जब स्वार्थ हट जाता है उतने समय भगवान की शायद आवश्यकता भी कम हो जाती है। कभी भगवान की आवश्यकता नहीं है, उनको बैठने दो शांति से। और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तब भगवान को भी उपद्रव में हम डाल देते हैं, आ जाओ आप भी हमारे साथ। ये जो भेद व्यवहार का है, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर तत्व वही है जो है वही, परंतु हम जीव भाव से, शरीर भाव से, व्यवहार के कारण, व्यवहार के साथ हम जुटे हुए हैं और उसमें भेद आता है और उस भेद को हम भगवान के साथ भी जोड़ देते हैं। तब जाकर के स्वार्थ वो धर्म नहीं रहता है जीवन में, वो स्वार्थ बन जाता है। तो स्वार्थ और धर्म का भेद जब तक हमें प्रतीत नहीं होता है तब अज्ञान अवस्था में ये जीव भाव से हम हमारे उसी स्वार्थ को ही हम धर्म करके हमारे पास रखते हैं। धर्म की उपासना नहीं हो रही है, स्वार्थ की उपासना हो रही है। उन ऋषि मुनियों ने शुद्ध धर्म का स्वरूप बताया हुआ है, अकिंचनता, परमात्मा की उपासना बताई है, निस्वार्थ। जब भी जाते हैं हम, जब समझते हैं कि ये सही नहीं है, उस समय अपना व्यवहार थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए ऐसा विचार आता है। लेकिन जब अपने स्वार्थ की आंधी उठती है, चलती है, उस समय फिर हम उसी में घुस जाते हैं। तो ये भेद है और भेद का स्वरूप हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक धर्म का सत्य स्वरूप, धर्म की वास्तविकता हम नहीं प्राप्त कर सकते। ईश्वर को भी, ईश्वर की प्राप्ति करना है तो हमारे जीवन में से यह व्यवहारिक भेद हटाना पड़ेगा, तब ही जा करके हमारा परमात्मा का, आत्म तत्व का सत्य स्वरूप हमें प्रतीत होगा, हमारे हाथ में आएगा। जब तक जीवन का व्यवहार पड़ा हुआ है, हम फंसे हुए हैं, तब तक हाथ में व्यवहार में, व्यवहार ही हाथ में आएगा, स्वार्थ ही हाथ में आएगा, जा करके आत्मा और ईश्वर आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आप उसमें फंसे हुए। उस व्यवहार में से बाहर निकल के ही, स्वार्थ का त्याग करके परिपूर्ण रूप से एकमात्र ईश्वर, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप का ही चिंतन, उसका ही अनुसंधान, तब जा करके उसके साथ आप जुड़ सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो। और वही परम सुख देने वाला है, वही शाश्वत शांति देने वाला है, अपना स्वरूप जो परमात्मा का अंश है। बाकी ये पांच भौतिक जड़ शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, उसका व्यवहार, उसका भेद, उसका स्वार्थ हमें कभी भी हमारे आत्मा के तरफ, हमारे परमात्मा इष्ट के तरफ फरकने तक नहीं देगा, वहाँ पहुँचने की बात ही अलग रही। ये है भेद। जब तक भेद है वो काल्पनिक है, और काल्पनिक भेद हमें ईश्वर के समीप नहीं ले जा सकते। इस विषय में जो बात भागवत जी में हमें समझ में आती है, वैसी हमारे किसी शास्त्र ग्रंथ में इतना निरूपण कहीं पर नहीं है, इतना भेद कहीं पर हमें स्पष्ट नहीं किया है श्रीमद् भागवत में जो बताया। उद्धव जी का जो प्रश्न है, भागवत धर्म हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भागवत माने हमारा कल्याण। भगवत परायणता का मार्ग कौन सा है, वो स्वरूप कैसा है, वो विषय क्या है, ये प्रश्न है। तो भागवत धर्म तो मानव मात्र का कल्याण करने वाला है। सब में से अध्यास और आसक्ति को छुड़ा करके एकमात्र इष्ट परमात्मा अपने आत्म तत्व तक पहुंचना, उसी का नाम है भागवत धर्म। जो कुछ है वो समर्पित कर दो, कायेन वाचा मनसे इंद्रियेन वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावः। जो कुछ भी चल रहा है, हो रहा है, कर रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ उसमें, बस यही वही परमात्मा की इच्छा है, उसकी ही लीला है, उसका ही संकेत है। वैसे मैं किए जाता हूँ, जैसे कठपुतली वो नचाने वाला नचा रहा है उंगलियों से, वैसे मैं नाच रहा हूँ। कर्तृत्व का अहंकार संपूर्ण बाहर निकल जाना चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए। जब तक अहंकार भरा पड़ा हुआ है, तब तक हम उस अहंकार के संग के कारण अहंकार का रंग भी लाल होता है, और हम भी उसमें उसी प्रकार हो जाते हैं तमस प्रकृति वाले। तमस की प्रकृति लाल है, और उस तमस वृत्ति के कारण अहंकार के बीच में हम घिरे रहते हैं, नहीं पार पाए। तो भगवान कहते हैं ऐसी दुर्लभ अवस्था जो इष्ट प्राप्ति की, और ऐसा स्वरूप प्राप्त करने के लिए भागवत जी में जो भेद बताया हुआ है भक्ति का और स्वस्वरूप का, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा है, उद्धव लोक और परलोक के लोभ के कारण, समझ लो फिर से, यह लौकिक सुख और पारलौकिक सदगति। तो कहते कि लोक और परलोक के लोभ में, उस लोभ के कारण भी कर्मानुसार अनुष्ठान होता है, और उसी से विक्षेप भी आते हैं। परंतु विक्षेप भले बढ़ता रहे, बढ़ने दो, और विक्षेप बढ़ेगा ही, कारण है उसका, क्योंकि कर्मानुष्ठान हो रहा है यहाँ पर, तो लोभ है सदगति की, भगवत प्राप्ति का लोभ है। उस लोभ के कारण कर्मानुष्ठान होता होगा, और इससे विशेष भले ऐसा बढ़ता रहे, क्योंकि कोई कर्म गुण भी होता है और वो भी दोष भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा, चीज एक ही है। तो यहाँ पर भगवान वो चीज बता रहे हैं कि जैसा अपना व्यवहार होगा वैसी ही दृष्टि होगी, और दृष्टि के अनुरूप उसमें अच्छा बुरापन आएगा, क्योंकि हमारी उसमें उस प्रकार की रुचि है, अच्छी या बुरी। तो यहाँ पर भगवान उद्धव जी को कहते हैं, इह लोक में भगवत भक्ति और शरीर छूटने के बाद सदगति का लोभ, एक कर्मानुष्ठान होता है, और इसके कारण उसमें भले विक्षेप पड़े, तो बात तो बुरी नहीं है, विक्षेप होते हुए भी, इसमें लोभ होते हुए भी वो कारण वो कार्य अच्छा है, इसलिए वो कर्म अनुष्ठान भले कैसा भी विक्षेप होता है तो होने दो। उसमें प्रश्न यहां पर आता है कि शांति कभी भी नहीं मिल सकती, जब तक उसमें विक्षेप रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। यहां तक होता है कि जो लोग किसी भी इच्छावश कामनावश कर्मों में लग जाते हैं, उन्हें भगवत संबंध की संबंधी वार्ता भी अच्छी नहीं लगती। सही बात, हम भगवान को सुनने के लिए तैयार नहीं होते जब हमारा स्वार्थ होता है, जब हम दुखी अशांत होते तब भगवान की बात नहीं मानते, हमको तो ये चाहिए ये चाहिए ये दे देते। जिसके लिए भगवान ने पहले ही अपने श्री मुख से कह दिया है, फिर भी उसमें श्रद्धा नहीं है भगवान के कहा हुआ उसमें। जो अनिवार्य है आपको, आप कभी भी उसको टाल नहीं सकते, उसके लिए आप रो रहे दुखी है। तस्माद अपरिहार्यर्थम न त्वम सोचित तुम अरसी, अर्जुन तू सोच मत कर, वो अपरिहार्य है, उसका त्याग तुम कभी नहीं कर सकते हो और आप मृत्यु से कभी नहीं बच सकते हो। मृत्यु एक दिन आकर के खड़ी ही रहेगी, इसलिए कहते हैं कि उसकी चिंता मत कर, अपरिहार्य है तुम न तुम सोचित तुम अरसी, उसकी चिंता उसका सोच उसका विचार मत कर, वो आएगा ही, उसके उससे डरो भी मत। अब यहां तक कह दिया है फिर भी हम माने के लिए तैयार नहीं, भगवान के सामने रो रहे हैं दुख अशांति के। जो है सो है ही, उसको आप नहीं टाल सकते नहीं बच सकते, फिर भी प्रभु के पास, क्योंकि स्वार्थ बन गया है और स्वार्थ दुखी स्वार्थी अशांत व्यक्ति भगवान की बात को मानने और समझने के लिए जरा भी तैयार नहीं, वो अपना स्वार्थ ही देख रहा है, नहीं मेरा स्वार्थ पहले पक्का करो फिर आपको मानूंगा। तो ये यहां तक होता है कि कामनावश जो कर्म करता है और उसमें लग जाता है कि उसके उस समय अपने स्वार्थ के कारण भगवान संबंधी कोई भी बात सुनने के लिए उसको तैयारी नहीं और अच्छी भी नहीं लगती, मेरे मेरा स्वार्थ पूरा करे फिर बाद में भगवान को बुलाऊंगा। जब भगवान स्पष्ट अपने श्रीमुख से कहते हैं कि नाम रूपात्मक जो जगत है वो क्षण भंगुर है, नाशवंत है और असत्य है, फिर भी हमारा कर्मानुष्ठान हमारा स्वार्थ वही ले जाता है जो भगवान नहीं जाना, भगवान नहीं जाने देता है, नहीं जाने देने के लिए तैयार नहीं है। उस समय उस मार्ग पर हम आरूढ़ हो चुके हैं, जहां पर मना कर रहे हैं उस रास्ते से हम जाने के लिए तैयार हो गए। और सबकी मानसिकता ये होती है, कहा जाता है कि भाई ये मार्ग भयावह है वहां पर नहीं जाना, तो ऐसे देखने के लिए जानबूझ करके जाएंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ी कुतूहलता भी है स्वार्थ भी है। वैसे ही भगवान की वहां पर निषेधात्मक आज्ञा होते हुए भी हम उधर पहुंच जाते और वहां जाकर के दुखी होते हैं। फिर कहते काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या, दोष लगाए दोष लगाते हैं भगवान के ऊपर। ये नहीं सोचते कि भगवान ने पहले लाल बत्ती बता दी थी फिर भी हम गए थे, जाने का के बाद वहां पर दुखी हुए तो फिर भी भगवान को चिल्लाते हैं, किसके लिए, क्यों, आपको पहले से ही सूचना दी थी फिर भी आप नहीं हटे उसमें से। तो यहां इस अवस्था को भगवान कहते हैं। सही बात तो यह है कि हमारे शास्त्रों का तात्पर्य इन स्वाप्निक स्वर्गादि लोगों का या लौकिक भोगों की प्राप्ति में नहीं है, जिसको सदगति कह रहे हो, जिसको सुख कह रहे हो भोग को, उसमें उस प्राप्ति में उस भोगों की प्राप्ति में यह वास्तविकता कभी नहीं मिल सकती आपको, कभी प्राप्त नहीं कर सकती। ये शुद्ध रूप से ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का प्रतिपादन करने वाला धर्म है। आत्मा की एकता का प्रतिपादन करना शुद्ध ब्रह्म, हमारा शुद्ध चैतन्य सूक्ष्म जो हमारा स्वरूप है, और वो परब्रह्म उस दोनों का एकत्व करने के लिए ही वो शुद्ध प्रतिपादन करता है। मंत्र एवं ऋषियों के परोक्ष स्वरूप रूप से प्रतिपादन अभिष्ट है, किया हुआ है, इस प्रकार के सही वास्तविक सत्य ही है। और वही भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा को ये प्रिय लगता है। वेदों का परम तात्पर्य समझ लेना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं, क्योंकि वहां पर स्वार्थ भरा पड़ा हुआ है। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक शास्त्रों का तात्पर्य समझ में आना भयंकर मुश्किल है। जो हम ऋषियों के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो व्यवहार से थोड़ा दूर हटना ही पड़ेगा। यह अनंत अपार एवं परम गंभीर है। वेद किसका विधान करता है, किसका निषेध करता है? वेद माने अपने शास्त्र, अपना ज्ञान किसका नाम लेता है? ये सब संकल्प विकल्प हमारे में रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव इसको मेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं जान सकता। इस परम स्वरूप को एक मैं ही समझता हूं, मैं ही जानता हूं। वास्तविक स्वरूप क्या है, सत्य क्या है? भगवान स्वयं ही सत्य है और सत्य ही सत्य को पहचानते हैं। इसलिए भगवान हमारे वेदों की आज्ञा है सत्यम वद, फिर बाद में धर्मम चर। धर्म के अंदर यदि आपको अपनी गति करना है तो सबसे पहले इस सत्य स्वरूप को जानना पड़ेगा। शेष इस वस्तु को हम फिर देखे करियो। मेरा ही आश्रय करके दृश्यमान भेदों का भेदों को बतलाता है। अंत में ये सब माया मात्र का भेद उसको भी निषेध करके स्वयं परमात्मा जो स्वरूप तत्व है वो निर्मल हो जाता है। मुझसे अभिन्न भगवान के अंदर होते हुए भी नहीं और नहीं होते भी सही, अभिन्नता यही ये सृष्टि और सर्जन दोनों का एक विशेष गुण है। जो उदार वृत्ति बताई है यहाँ पर, उदार दृष्टि है कि सभी प्रकार के मतांतर और उनके प्रतिपादनों का युक्तियुक्त बताया करते। भगवान जन्म और मृत्यु क्या है उसके ऊपर उद्धव को कह रहे हैं कि जन्म किसको कहते हैं, मृत्यु किसको कहते हैं, और उस जन्म का तात्पर्य क्या है। यहां पर जन्म मृत्यु का अर्थ बताते हुए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये मन है, ये मन कर्मों के संस्कार से अत्यंत पीड़ित है। मन अनेक जन्म जन्मांतर के संस्कार ऐसे पड़े हुए उसके द्वारा वो पीड़ित आक्रांत है, उसके ऊपर संस्कार का आक्रमण हो रहा है मन के ऊपर, और मन के द्वारा जीवन ऊपर विचारों का आक्रमण हो रहा है। इसलिए संस्कार मन का आक्रांत है और मन जीवन का आक्रांत है, और जो भी आक्रांत है वो अपना कोई न कोई परिणाम उसके ऊपर थोप देता है। आक्रांता, आक्रमण करने वाला, अपनी जो हुक्मी या अपनी इच्छा को उसके ऊपर स्थापित कर देता है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में हमारे जो संस्कार है पुराने जन्म जन्मांतर के, वो संस्कार हमारे मन ऊपर अपनी कुछ न कुछ असर स्थापित कर देता है। अब मन के ऊपर जब ये आरूढ़ हो गए संस्कार, संस्कार को वैसा ही सोचना चिंतन करना पड़ेगा। अब मन के जो विचार है वो विचार हमारे जीवन के ऊपर स्वार हो जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं, और अपनी जो कुछ इच्छा होती है मन वो विचारों द्वारा अपने ऊपर थोप देता है कि ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही है। इसका तात्पर्य कि मन भी स्वतंत्र नहीं है, मन संस्कार के विवश है, वश हो गया, उसको अधीन हो जाना पड़ता है अनिच्छा से भी। जैसे हमारे आत्मा की अवस्था, जो स्थिति, जो दशा है, उससे हमें बाहर आने के लिए प्रयत्न करना है, उसी का नाम है साधना, उसी का नाम है साधन, उसी को ही करने वाला है साधु। जो साधना को साधने वाला है उसको कहते हैं साधु। मन को साधना है, अनुसंधान करना है अपने आत्मा के साथ। साधु, साधन और साधना, उसका अर्थ यही है कि अनुसंधान करने वाले किसके साथ, परम तत्व के। साधना भी उसके लिए, वो साधु भी जीवन उसमें अपना जीवन समर्पित कर रहा है जिसके द्वारा वो कुछ प्राप्त करना चाहे। ईश्वर के साथ, परम तत्व के साथ अपना संबंध बांधना चाहे, जोड़ना चाहे। तो मन है अपना, मगर वो आदिन है उसके संस्कार के अधीन, पूर्व जन्म जन्मांतर के वो संस्कार पड़े हुए और वो संस्कार के द्वारा मन के विचार, तो इसकी उसका अनुशासन, संस्कार का अनुशासन मन पर और मन के विचारों का अनुशासन जीवन पर आ गया। अब करे तो भी क्या करे, मन ऐसा चाहता है अपनी इच्छा अनुसार चल लेते हैं, तो यहां पर उस इच्छा का निवारण करने के लिए साधन भजन है। साधु जीवन भी इसलिए है कि मन के पुराने जो संस्कार है जन्म जन्मांतर के, उसको मिटाना है, उसको शांत कर देना है, और उसके द्वारा हमारा साधन का अनुसंधान अपने आत्मा के साथ। अब ये जो अनुसंधान हम चाहते हैं विचारों के ऊपर, हमारी अधीनता, हम विचारों के अधीन नहीं होंगे, नहीं मन के अधीन नहीं होंगे, मन हमारे कहे में ही चलना चाहिए, ये आवश्यक है। हम मन मानी करेंगे तो धोखा खा जाएंगे, कहीं पर भयंकर भारी नुकसान हो जाएगा, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे में ही हमारा मन जो भयंकर नुकसान कर देता है उसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। ऐसा भयावह भयंकर नुकसान हमारा मन ही हमको कर बैठता है। अब ये संस्कार जो हटाना है कि हम कैसे बचे मन से, मन से होने वाले नुकसान से कैसे बचना हो, तो मन की जो विचारधारा है उसकी उसको पलटनी पड़ेगी। ऐसे बह रही है नदी, जाके समुद्र में अपने अपना जल डाल रही है तो मीठा जल बिल्कुल खारा हो जाएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। तो उसमें हमें रोक करके उसका बांध बांध करके उस जल को नई दिशा देना है। उसको ऐसे हम ढालेंगे कि जहां पर आवश्यकता है वहां पर पहुंचे, और वहीं से हम हमारे जीवन की उर्वरा जो प्राप्त होने वाले जो फल है उसको प्राप्त कर, उसको मिलने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम हमारे विचारों की दिशा बदल देंगे। जो सीधा ऐसे ही चलता है उसको रोकना पड़ेगा, उसको वैसे ही नहीं बहने देंगे, जा करके कुछ काम में ना आए, ऐसा ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे। तो उस मन को अपने वश करने के लिए, उस मन के विचारों की जो प्रवाह है उसको उसकी दिशा बदलने के लिए हमें साधन करना है। और उस साधन के द्वारा जो जन्म और मृत्यु उसके ऊपर हमारा कुछ परिणाम प्राप्त हो सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। जब मन हम बदलने के लिए जा रहे हैं, उसके विचारों को उसका सही मार्ग जहां पर जरूरत है, जहां आवश्यकता है वहां पर ले जाने के लिए, तो वो है साधन, वो है साधना, और उस जीवन का नाम है साधु, जो अपने मन की गति बदल सके, अपने मन के विचारों की धारा को पलटा दे, और उसी धारा से हमारा जन्म क्या है, हमारा मृत्यु क्या है, वहां तक पहुंचा है। जन्म और मृत्यु तो व्याधि है ही, एक रोग है, उसको भवरोग कहा है, और उस भवरोग को मिटाने वाले कोई भी जो वैद्य है, उसका उपचार है, उसकी औषधि है, तो गुरु भवरोग वैद्य कहा हो, सही मार्ग बताने वाले वही है, हमारे जन्म और मृत्यु को टालने वाले भी वही है। उपदेश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, साधन मिलेगा गुरु के पास से, और वही सदगुरु शिष्य का उद्धार करेंगे, उसको मोक्ष दिलाने वाले, या प्रभु प्राप्ति कराने के लिए, या आत्म तत्व तक पहुंचाने वाले जो कोई भी हो वो गुरु है। गुरु के बिना मार्गदर्शक नहीं है, कौड़ी बिन हट नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। आपके पास पैसा होगा तभी आप व्यवसाय व्यापार कर सकते, वरना वो व्यापार नहीं हो सकता, धंधा नहीं कर सकोगे। वैसे ही गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, किसी भी तरह हमारे मन से किसी भी विभूति को, किसी भी महापुरुष को अपने जीवन में एक ध्येय पुरुष, आदर्श पुरुष का स्वीकार करना पड़ेगा। वही ध्येय पुरुष, वही आदर्श पुरुष गुरु का काम करेगा और हमारे जीवन का लक्ष्य